حيا على الفلاح وهيا على الفلاح عجب فقرك لجماني أربعين كرب بلاك يا جواني أربعين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. هو الذي مولى الذين آمنوا والذين كفروا لا مولى لهم. ثم الصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أفوض أمري إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله. برادران عزیز، سوگواران مظلوم کربلا، ہماری اس سلسلہ گفتگو اس کا عنوان احیاء امر اہل بیت، جو کہ ماخوذ ہے متعدد حدیثوں سے. انشاءاللہ آج اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے مل کر اپنے مولا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ مل کر پڑھیے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیکم منی سلام اللہ ابدًا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر الاحد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اتنی ہی بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. چھٹے امام کی حدیث جناب فضیل سے، جسے آپ کی خدمت میں نے دو دن پیش کیا، کہ امام نے فضیل سے پوچھا کہ تجلسون و تحدثون، کیا ایسا ہوتا ہے کہ تم بیٹھو آپس میں اور تحدثون آپس میں گفتگو کرو؟ قال نعام جعلت فداک، کا مولا یقیناً ایسا ہوتا ہے میں آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں. قال ان تلک المجالس احبها، مولا نے فرمائی جو تمہارا بیٹھنا ہے، یہ تمہاری مجلسیں ہیں، میں اسے محبوب رکھتا ہوں، اسے پسند کرتا ہوں. اور پھر میرے مولا نے فرمایا فحیو امرنا، دیکھو اگر تم بیٹھتے ہو اور گفتگو کرتے ہو تو کوشش یہ کرو کہ ہمارے امر کو زندہ کرو. فحیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو. فرحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحمت کرے اس شخص کے اوپر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرنے والا ہے. مجھ سے کل کہا گیا کہ یہ عبارت ابھی تک غیر مانوس ہے، تھوڑا سا اگر ہو سکے تو اسے چند جملوں کے اندر اسے بیان کرنے کی کوشش کریں. تو تعمیل حکم میں بہرحال اس موضوع کے اوپر دیکھیں، احیاء یعنی احیاء کا مطلب ہے زندہ کرنا، یعنی حیات بخشنا، حیات دینا. تو دو حصے ہیں احیاء، ایک یہ کہ زندہ کرنا، دوسری چیز کیا ہے کہ کسے زندہ کرنا ہے، وہ جو امر اہل بیت ہے اسے زندہ کرنا ہے. یہ جو ہماری شبائے قدر ہیں اور اس طریقے کی جو راتیں ہیں، فارسی کے اندر اور عربی میں بھی بہرحال جو خوبصورت تعبیر اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے شب احیاء. یہ وہ شب ہے کہ جو زندہ کرنے جانے والی شب ہے. یہاں پر استاد مرتضی مطہری نے بڑی خوبصورت بات کی، انہیں کہا دیکھیں کہ یہ رات، اس کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے کہ رات کو زندہ کیا جائے، اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ یہ رات وہ ہے کہ جس کے اندر ضرورت یہ ہے کہ ہم زندہ ہوں، ہم خود حیات تک پہنچیں، کیونکہ فقط چلتے پھرتے رہنا، کھانا، سانس لینا یہ حیات کی علامت نہیں ہے، یہ وہ حیات ہے کہ جس میں انسان کے ساتھ جانور بھی شریک ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے، استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو جواب دو، کہ دو ترجمے کیے گئے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کرنے والی ہے، یہ ایک اور ترجمہ اس طریقے سے کہ جب تمہیں بلایا جائے تو جواب دو تاکہ تم زندہ ہو سکو، تاکہ تمہارے اندر حیات آ سکے۔ بس ہر حیات حیات کہلانے کے لائق نہیں ہے، بس احیاء یعنی زندہ کرنا، حیات بخشنا۔ اور کس چیز کو؟ امر اہل بیت، اہل بیت علیہ السلام کا جو امر ہے روایتوں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو امر اہل بیت یعنی اہل بیت علیہ السلام کی حاکمیت، کہ دو مجلسوں میں نے آپ کی خدمت میں سے پیش کیا کہ اہل بیت کی حاکمیت وہ مقام کہ جو اللہ نے عطا کیا تھا، اور لوگوں نے عزالتکم عن مراتبکم اللتی، اس مقام سے ہٹا دیا کہ رتبکم اللہ فیہا، کہ جس پر خدا نے آپ کو رکھا تھا۔ بس یہ حق حاکمیت جو اہل بیت علیہ السلام سے ظلم و عدوان سے چھین لیا گیا، اسے دوبارہ پلٹانا، یہ ہے اہل بیت کے امر کو زندہ کرنا، یعنی اس حق حاکمیت کو، حق حاکمیت فقط اہل بیت کے پاس ہے، یا ان کی نیابت میں اس کے پاس ہے کہ جسے انہوں نے منسوس کیا ہے، یا نام لے کر یا اوصاف بتا کر۔ اور یہی وہ امر ہے کہ جس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے۔ ظہور کیا ہے؟ ظہور سب سے بڑا مرحلہ ہے اہل بیت کے امر کے زندہ ہونے کا۔ کیا آپ کی خدمت ہے میں نے صلی اللہ، کیا آپ کی خدمت ہے میں نے عرض کیا کہ وہ جو پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ وہ جو دعا ہے زیارت عاشورہ کے اندر کے پروردگار ہمیں رزق دے کہ ہم آپ کے خون کے بدلے کو طلب کر سکیں، اس میں جو تاریخی ظلم ہے وہ یہی ظلم ہے کہ جو اہل بیت کا مقام تھا، جو حق تھا، وہ ان سے چھین لیا گیا۔ ظہور وہ مرحلہ ہے کہ جس کے اندر یہ حق دوبارہ اپنے مقام پر پلٹے گا کہ جسے ہٹا دیا گیا۔ یہ بقیت اللہ، سارا اللہ سے ہمیں پڑھنا ہے یہاں تک کہ بقیت اللہ تک پہنچے۔ یہ سارا اللہ وہ کہ جس کے خون کا طالب، جس کا ولی دم خود خدا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں دو نکات اس سلسلے میں عرض کیے تھے کہ پہلی بات یہ کہ دیکھیں، جب ہم ظہور کی بات کرتے ہیں تو پہلی چیز جسے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمیں خود ظہور کی سمت بڑھنا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام کے اندر کسی قسم کی کمی ہے یا خدا کے فضل میں کسی قسم کی کمی ہے، ہم ہیں کہ جسے اس طرف بڑھنا ہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کی خدمت میں کل عرض کی تھی وہ یہ کہ یہ جو آمادگی ہے، یہ آمادگی فردی نہیں ہے، فرد کا تیار ہونا کافی نہیں ہے۔ پورے طول تاریخ کے اندر ہم دیکھیں افراد باتقویٰ، باتقویٰ افراد موجود تھے، لیکن یہ افراد کا باتقویٰ ہونا یا باتقویٰ افراد کا موجود ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایک گروہ ہو، ایک جامع، ایک معاشرہ ہو، ایک جماعت ہو کہ جو ایک ساتھ اس امر کی منتظر ہو اور اس کے لیے آمادہ ہو۔ کہ جو قرآن کی آیت ہے یہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، خدا محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کے جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں، مگر کیسے قتال کرتے ہیں؟ صفا، صف بنا کر اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں، یعنی ایک کے ساتھ ایک کھڑا ہوتا ہے، شانہ بشانہ کھڑے ہو کر قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اس طریقے سے کہ گویا کانہم بنیان مرصوص، کہ گویا وہ ایک دیوار ہیں سیسا پلائی ہوئی، کہ جس کے اندر کوئی جدائی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب ہم تربیت دینی کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دین نے جو ہمیں تربیت کی ہے، جو تربیت کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعیت یعنی گروہ ایک ساتھ ہونے، اس کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وہ چیزیں کہ جو فردی ہیں اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈیویجولسٹک چیزیں ہیں اس کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک اجتماعیت پائی جاتی ہے۔ کہ نماز کی مثال آپ کی خدمت میں کل میں نے عرض کی، اور اس کے علاوہ اور جو شخصی چیزیں ہیں، جب دعا کے لیے کہا گیا تو کہا کہ اگر 40 لوگ مل کر دعا کریں تو پھر دعا رد نہیں ہوتی، دعا کرو تو کوشش کرو کہ جمع ہوں لوگ، مل کر دعا کریں۔ پانچویں امام یہ کہتے ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں کہ میرے بابا جب دعا کرتے تھے تو ہم سب لوگوں کو جمع کرتے تھے، گھر میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کو جمع کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں دعا کر رہا ہوں تم سب آمین کہنا۔ وسائل الشیعہ کے اندر روایت ہے کہ اگر کسی کے تشییع جنازے کے اندر 40 لوگ جمع ہو جائیں، اور وہ جو جملہ کہ جس کو ہم اس میت کی جب نماز پڑھتے ہیں صلاۃ المیت کے اندر جو ہم کہتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار ہم اس سے کوئی اور چیز نہیں جانتے سوائے خیر کے، ہم نے صرف فقط خیر دیکھا ہے۔ وسائل شیعہ کے اندر یہ روایت ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو تم نہیں جانتے کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، اس نے کیا گناہ کیے تم اس کو نہیں جانتے، لیکن تم جو شہادت دے رہے ہو اس کے نتیجے میں اجزت شہادتکم، میں تمہاری شہادت کو قبول کرتا ہوں، وکفرت لہ ما اعلم مما لا تعلمون، اور قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اس کے وہ گناہ کہ جسے تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، میں سب کے اوپر پردہ ڈال دوں۔ کفر تو لہو، میں نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا، ان کے اوپر ان گناہوں کے اوپر کہ جنہیں تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے مل کر اس بات کی گواہی دی ہے کہ تم نے اس سے فقط خیر دیکھا ہے۔ بس یہ معاشرہ ایک گروہ جماعت مل کر امام کی طرف حرکت کرے، مل کر امام کے لیے آمادہ ہوں، فرد کا اکیلے آمادہ ہونا کافی نہیں ہے، یہ خدا کا قانون ہے، یہ امتحان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا اگر چاہتا تو، آپ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کے لشکر خدا کے لیے، زمین و آسمان کے لشکر ولی خدا کے اختیار میں ہیں۔ اگر خدا یہ نہ چاہتا، یعنی خدا کا اگر ارادہ یہ نہ ہوتا کہ اس طریقے سے خدا اپنے اولیاء کی، اپنے انبیاء کی، اور ان کو جنہیں انعام امام بنایا ہے مدد کرے، تو خدا کے جو لشکر ہیں وہ کافی تھے امام کی مدد کرنے کے لیے۔ لیکن خدا کا ارادہ یہ ہے، اور یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہی انسانوں کا امتحان ہے۔ امتحان یہی ہے کہ انسان کتنا اپنے امام کی خدمت کے لیے آمادہ ہے۔ دیکھیں اس آیت کے اوپر غور کریں، قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ اِن یُرِیدُوا اَن یَخْدَعُوكَ، کہ حبیب اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو دھوکہ دیں، یعنی آپ کے ساتھ کوئی مکر و فریب کریں، کہ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بس اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور کہا کون اللہ؟ هُوَ الَّذِي اَيَّدَكَ، وہ اللہ کے جس نے آپ کی تائید کی، آپ کی نصرت کی، کس کے ذریعے سے؟ بے نصر ہی، اپنی نصرت کے ذریعے سے تھے، اور وبالمومنین، اور مومنین کے ذریعے سے۔ یعنی خدا کا ارادہ، خدا اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے کہ خدا وہ ہے کہ جس نے آپ کی مدد کی اپنی نصرت کے ذریعے سے اور مومنین کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے امام نے کہا کہ حل من ناصرین ینصرونی، ہے کوئی ایسا جو میری مدد کرے، یا ینصرونا ہماری مدد کرے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے دنیا کے اندر شریعت کو جاری کیا ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، اس کا نظام ہے، اس کے نظام میں یہ ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے اولیاء کی مدد مومنین کریں، اور اپنے اختیار سے کریں۔ اس لیے خدا نے یہ کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ کیا کہا خدا نے؟ کہا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم کریں گے مدد، یہ نہیں کہا۔ خدا نے کہا کہ اگر تم من ارتد من دین ان دینکم، تم میں سے جو अपने दीन से हट जाएगा, फसौफल्लाहु याती बिकौमिन, तो खुदा फिर एक ऐसी कौम को ले आएगा कि जो अल्लाह को महबूब रखते होंगे, उसके रसूल को महबूब रखते होंगे, और अल्लाह उन्हें महबूब रखता होगा। यानी ये काम जो है ये मोमिनीन के हाथों अंजाम पाना है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है, इख्तियार के ज़रिए से, और यही इम्तिहान है। अगर तुम नहीं करोगे तो अल्लाह एक और कौम ले आए, अगली नस्लें आ जाएंगी, दूसरे लोग आ जाएंगे, किसी और जगह के लोग आ जाएंगे कि जो अपने इख्तियार से इस चीज़ को कबूल करें। अब ये हमारा इम्तिहान है कि हम किस तरीके से अपने आप को आमादा करते हैं अपने ज़माने के इमाम के। कला की खिदमत में जो मैंने बातें अर्ज की, उससे अगर एक बात आगे बढ़ाएं कि देखें, वो माशरा या वो जमात कि जिसके अंदर ये आमादगी पाई जाती है कि वो अपने इमाम का साथ दे सके, उसकी चंद खसूसियात हैं जो बयान की गई हैं, और ये खसूसियात वो हैं कि जिन्हें हमने तहसील करना है, जिन्हें हमने हासिल करना है, यहाँ तक पहुँचना है, अपने आप को आमादा करना है। यहाँ कला की खिदमत में कहा कि जमात हैं, एक दूसरे के साथ दिल जुड़े हुए हैं, इससे बढ़कर एक और चीज़ है, वो ये है कि इनके आपस में, इनके दरमियान मोहब्बत पाई जाती है, रहमा हो बैना हो, ये आपस में बहुत ज़्यादा मेहरबान है, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान, एक दूसरे के साथ भी हैं और एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा मेहरबान भी हैं, रहीम हैं एक दूसरे के लिए, रहमा हो बैना। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से एक सलावत पढ़ते हैं इमाम की ज़ात पर, आप जानते हैं कि करबला के बाद बहरहाल जिस तरीके से शिया बिखर गए थे, शियों में एक इंतशार पैदा हुआ था, उसके बाद फिर चौथे इमाम ने जो 35 साल जो जिहाद किया, दोबारा उन शियों को जमा किया, कि जब हम पांचवें इमाम के ज़माने में देखते हैं तो हमें फिर नज़र आता है कि इमाम जिस वक्त मस्जिद नबवी के अंदर आते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों की एक जमात है, कई हज़ार लोग हैं कि जो इमाम की बात सुनने के लिए आमादा और तैयार हैं। इन शिया जो बिखर गए हैं, दोबारा हमें वो नज़र आते हैं कि वो जमा हुए हैं। इमाम को एक शख्स ने ख़त लिखा और इमाम से इस तरीके से कहा कि इन्ना असहाबना बिलकूफा जमातुन कसीरतुन, कि हमारे जो चाहने वाले हैं, यहाँ पे जो चाहने वाले हैं, जो शिया हैं कूफे के अंदर, वो जमात बड़ी कसीर है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। जमातुन कसीरतुन फलव अमर तहम लाताऊक व तबाऊक, अगर आप उन्हें अम्र कर दें, अगर आप उन्हें कोई हुक्म दें तो क्या करेंगे, लाताऊक तो आपकी इताअत करेंगे, व तबाऊक और आपकी पैरवी करेंगे। इमाम ने इसके जवाब में कहा, देखिए ये दावत क्या है, दर हकीकत जो दोबारा क़याम की दावत है इमाम को, कि कूफे के अंदर आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप क़याम करेंगे, अम्र करेंगे, देखिए ये तमाम आप जानते हैं कि उस वक्त इस तरीके से खुलकर बात बयान नहीं की जा सकती थी, अगर आप इनको अम्र करेंगे, आपकी इताअत करेंगे, आपकी पैरवी करेंगे, यानी यहाँ पर जो है वो ज़मीना आमादा है क़याम के लिए। इमाम ने जवाब में कहा, फ़काल, इमाम ने कहा, देखो क्या तुम्हारे दरमियान ऐसा होता है कि यजीओ अहदहुम इला किस आखी फयाखुज़ मिन्हु हाजतहु, क्या ऐसा होता है कि तुम में से जब किसी मोमिन को अगर कोई हाजत हो तो वह अपने भाई के माल में से उतना के जितनी उसको ज़रूरत है उससे बगैर पूछे उसमें से ले ले। यानी क्या इस तरीके से है, क्या तुम्हारी जेबें इतनी मुश्तरक हैं कि अगर उसको ज़रूरत है तो कितना, जितनी उसकी ज़रूरत है, जितनी हाजत है वो उसमें से ले ले। फ़क़ाल्ला, कहा क्या नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, इतनी हमारे दरमियान मोहब्बत, इतनी क़ुर्बत नहीं पाई जाती कि अगर किसी को ज़रूरत है तो वो बग़ैर पूछे और दूसरा बुरा ना माने उसके माल में से अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले ले। मौला ने कहा कि फहुम बिदमाइहिम अबखल, कि वो लोग जो अपने माल के अंदर बुख्ल यानी उसके अंदर अगर जो लोग कमी करने वाले हैं, जिसके अंदर अगर माल के अंदर उनके अंदर बुक्ल है, सखावत नहीं पाई जाती है, फहुम बिदिमाइहिम अबखल, तो वो जान देने के मामले में इससे ज्यादा बुक्ल का इजहार करेंगे। अगर माल के अंदर सखावत नहीं है तो फिर जान के अंदर सखावत नहीं होगी, जान देने पर आमादा नहीं होंगे कि जो माल देने पर आमादा नहीं है। अगर जेबें मुश्तरक नहीं है, अगर इतना नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये माशरा अभी ये जमात वहां तक पहुंची नहीं है। और अब दोबारा मजलूमियत की दास्तान नहीं दोहरानी है, क्योंकि एक करबला वो काफी है ता कयामत। यहां पर बहरहाल रहबर मुअज्जम ने इस बात की तरफ इशारा किया कि ये जो करबला के बाद जो कयाम होते रहे हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम का रद्द अमल इन कयाम के मुकाबले में क्या था। तो हम ये देखते हैं कि सारे कयामों के सामने यानी उनके मुकाबले में एक जैसा रद्द अमल नहीं था, हतमन बहुत सारे कयाम ऐसे थे कि जिनकी तायीद की थी। या कुछ हटे इमाम से जुमला है कि आप ये फरमाते हैं कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ, महबूब रखता हूँ कि कोई कयाम करे हक की खातिर और उसके घर वालों का जो खर्च है, जो उनका रोज़मर्रा का खर्चा है, वो मेरे ऊपर हो। लेकिन यहाँ पर भी सवाल होता है कि अगर ये कयाम इतना ही अहम है और पसंदीदा है तो फिर अहले बैत ने खुद कयाम क्यों नहीं किया करबला के बाद। आप जानते हैं कि चौथे इमाम ने कयाम नहीं किया, बहुत सारे इमामों ने पुश्त पनाही की है लेकिन खुद कयाम के अंदर अमलन शामिल नहीं हुए। तो उसकी वजह यही है कि अब वो कयाम होना है, अब कयाम वो है कि जो हाकिमियत तक पहुंचाए। अगर जमीना आमादा नहीं है कि वहां तक पहुंच सके तो पर अब इमाम मासूम उसके लिए अपनी जान कुर्बान करें, ये चीज हिकमत इलाही के खिलाफ। ये जज्बा देने के लिए, लोगों के जमीरों को, मुर्दा जमीरों को उभारने के लिए, उनको जगाने के लिए एक करबला काफी है। दोबारा करबला की तकरार की जरूरत नहीं है। अब इमाम मासूम उस वक्त कयाम करेंगे कि जब लोग इतने आमादा हों कि उस हाकिमियत तक पहुंचा जा सके। लेकिन बाकी लोग क्यों कयाम करें? इसलिए ताकि जो जुल्म की फिजा है इसके अंदर कुछ कमी आती जाए। जिस तरीके से इमाम हुसैन ने कहा था, जिस वक्त रुख्सत आखिर के लिए आए थे चौथे इमाम के पास, यही कहा था कि बेटा अब इसके बाद ला यस्कुनो दमी, क्या इस रोज़े आशूर के बाद अब मेरा खून आराम से नहीं बैठेगा, वो साकिन नहीं होगा, हत्ता यब असल्लाहुल महदी, यहाँ तक कि खुदा जो है वो महदी को मबूस करे। तो ये हरारत जिंदा रहनी चाहिए। लेकिन इमाम मासूम उस वक्त मैदान में आएंगे अब कि जिस वक्त लोग आमादा हो। इमाम ने बताया तुम लोग अभी आमादा नहीं हो, अगर तुम अपने माल के अंदर, तुम्हारे अंदर बुख़ल पाया जाता है तो जान में से ज्यादा बुख़ल पाया जाएगा। और फिर कहा कि इज़ा क़ामल क़ाइम, कि जब हमारे क़ाइम की जो हुकूमत होगी, जो उसका जमाना होगा, जाअतुल मुज़ामला, तो उस वक्त ऐसे ही आपस में मोहब्बतें होंगी, ऐसा ताल्लुक होगा कि वह यक्त रजुल इला की से आखी फयाखुज़ो हाजतहू ला यमनउहू, कि अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वह अपने भाई के माल में से ले लेगा, ला यमनउहू, और दूसरा उसे मना नहीं करेगा। ये जो चीज़ है कि एक जैसा यानी एक मुश्तरक ज़िंदगी की तरफ जाना, आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात का बढ़ना, मोहब्बत का बढ़ना, ये बहुत अहम है। और ख़ास तौर पर उस वक्त में कि जो मुसीबत का वक्त है, कि आप जानते हैं कि ये वक्त जो है वो मोमिनीन के लिए बहुत सारी जगहों पर आसान वक्त नहीं है। खुद इस कराची के अंदर आप देखें, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि तमाम मोमिनीन की हालत एक जैसी नहीं है। बहुत सारे मोमिनीन ऐसे हैं कि जो ज़िंदगी की ज़रूरियात अव्वलिया के भी मोहताज हैं, यानी वो चीज़ें कि जो ज़िंदगी गुजारने के लिए, फ़कत ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं, वो उन तक मुहैया नहीं है, मयस्सर नहीं है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। इस वक्त पे कि जब ज़रूरत ज़्यादा है, जब मुश्किलात ज़्यादा है, आप जानते हैं किस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, मुख्तलिफ जिस तरीके से चीज़ें की कीमत बढ़ती जा रही है, और सारी उन चीज़ों की कि जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, जो आसाइशें नहीं हैं, जो लग्जरीज नहीं हैं बल्कि नेसेसिटीज़ हैं, इसमें ये चीज़ के मोमिनीन के दिल आपस में जुड़े हुए हों, एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ हों, दूसरे के दर्दों गम के अंदर शरीक हो, उनमें हमदिली हमदर्दी मोहब्बत समीमियत पाई जाती हो, इसकी ज़रूरत कई गुना बढ़ जाती है। ये मेरे मौला का चाहने वाले हैं। और ये जो राबता है मोमिनीन के दरमियान, मुतअद्दिद रिवायतें हैं इस सिलसिले में भी, एक से ज़्यादा रिवायतें हैं कि जिसके अंदर ये बयान किया गया कि देखो ये जो तुम्हारा राबता है मोमिन भाई से, ये एक करारदादी राबता नहीं है। करारदादी राबता ये होता है कि जिसको किसी एग्रीमेंट के तहत आप जो है उस राबते को ईजाद करते हैं, और वो इस एग्रीमेंट के तहत राबता रहता है, और उसके बाद वो राबता ख़त्म हो जाता है। क्या बहरहाल जो सोशियोलॉजी के अंदर जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, ये कि जब एक साथ रह रहे हैं कुछ लोग एक जगह पर, तो उनके दरमियान एक नानविश्त, यानी एक ऐसी चीज़ कि जो कहीं लिखी नहीं जाती, लेकिन बहरहाल एक जो है वो उनके दरमियान सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक मुआहदा है कि चूंकि हम एक साथ रह रहे हैं, एक ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमारे ऊपर एक दूसरे के हुकूक जो हैं वो ये हैं। ये एक करारदादी राबता है, आप चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं, चाहें तो इसे कम कर सकते हैं, ईजाद कर सकते हैं, इसे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मोमिनीन के दरमियान जो ये राबता है, ये राबता ऐसा नहीं है। जाबिर जौफी पांचवें और छठे इमाम के असहाब सिर में से, असहाब सिर यानी वो असहाब के जो अहले बैत के असरार के हामिल हैं। आप जानते हैं कि सारे असहाब जो हैं वो एक जैसे एक मर्तबे पर नहीं हैं, उनके दरमियान फ़र्क पाया जाता है, मरातिब का फ़र्क मलहूस रहता है इमामों के, और इमाम उसी मरातिब के लिहाज से जो है वो चीज़ें अता करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो अहले बैत के असरार को जानते हैं। मरतबा यह कि अहले बैत जो है अपने असरार उनसे बयान करते हैं। हर इमाम के साथ कुछ ऐसे असहाब सिर गुजरे हैं। जाबिर जौफी जो हैं उन असहाब सिर में से हैं, पांचवें इमाम के भी और छठे इमाम के भी। एक दफ़ा इमाम के पास आया और कहा कि मौला, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा दिल बहुत बेचैन होता है, दिल घबरा रहा होता है, इतना कि मेरे घर वालों को, मेरी बीवी बच्चों को, सबको एहसास हो जाता है कि मैं परेशान हूँ, और बज़ाहिर मेरे ऊपर कोई मुश्किल नहीं आई होती। ऐसा नहीं होता कि मुझे किसी जगह पे कोई नुकसान हो, या मैं बीमार हूँ, या मैं मरीज हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरा दिल बहुत परेशान होता है, दिल के अंदर एक अजीब सा अंदोह, एक गम पाया जाता है। मौला ने जवाब में ये हदीस पढ़ी, जाबिर, इन्नल्लाहा अज़्ज़ा वजल्ला खलक़ल मुमिनीना मिन तीनतिल जनान, के परवरदिगार आलम ने मोमिनों को जन्नत की मिट्टी से बनाया है। अब फिर इसके अपने में इस तरफ जाना नहीं चाहता कि इसके अपने अंदर भी असरार हैं कि ये अदल इलाही के खिलाफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि खुदा ने कहीं पर कोई पार्टीबाजी की, उसकी चीज़ किसी भी चीज़ उसकी आदल के खिलाफ नहीं है। वो जो आलम ज़र है वहाँ पर जो पैमान हुए हैं वो सारी चीज़ें अपनी जगह, अल्लाह की अदालत के ख़िलाफ़ नहीं है बात, लेकिन खुदा क्योंकि हमारे मद्द नज़र है वही जो राबते की जो बात है, ताकि देखो इनको बनाया गया, इनको एक ही मिट्टी से बनाया गया, और कहीं पर कहा गया कि खुलकू मिन फाजिल तीनतना, कि इनको हमारी बची हुई मिट्टी से बनाया गया है। बहरहाल वो चीज़ है वो कि इनको एक मिट्टी से बनाया गया है। वह अजर फी है मिन री है रूह ही, और उसके बाद परवरदिगार आलम ने अपनी रूह जो है उसमें से इनके अंदर जारी किया है। एक रूह है, एक रूह वाहिद है कि जो मोमिनीन के अंदर खुदा ने जिसे जारी किया है, और फिर कहा फरमाते हैं मौला फलिक अल मोमिनो अखुल मोमिन ले अबी है व उम ही का, इसलिए मोमिन का मोमिन से राबता ये है कि जैसे वो एक ही माँ बाप से हो। आप जान आप जानते हैं कि ये जो बरादरी है, यानी ये जो भाई बहन होने का रहा है, कभी ये फ़कत माँ की तरफ से होता है और कभी फ़कत बाप की तरफ से होता है और कभी माँ बाप दोनों की तरफ से होता है। लेकिन यहाँ पे जिस रबते को कहा कहा कि ये इसलिए है कि अल मोमिन अखुल मोमिन, मोमिन जो है वो मोमिन का भाई है, ले अभी है वह उम्मे ही, बाप की तरफ से भी माँ की तरफ से भी, यानी ये रबता ऐसा है कि जैसे दोनों एक ही माँ बाप की औलाद है। और फिर कहा कि फाइजा असाबा रूहन मिन तिलकल अरवाह फी बलदिन मिनल बुल्दान हुज़्नुन, इसीलिए ऐसा होता है कि इन रूहों में से अगर किसी एक रूह में कि चाहे वो किसी भी शहर के अंदर हो, अगर कोई हुज़्न उसके ऊपर वारिद होता है, हज़नत हाज़िही लिअन्नहा मिन्हा, तो दूसरे मोमिन की रूह बेचैन हो जाती है क्योंकि ये वही रूह है, उससे जुदा नहीं है। ये जो रूह वाहिद है, ये रूह ईमान है का, ये वो रूह है कि जो मोमिन के अंदर जारी है। अगर ये मोहकम हो तो ऐसा होता है कि कहा कि वे फी बलदिन मिनल बुल्दान, किसी और शहर के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि उसी शहर के अंदर जिसे इंसान जानता हो, अगर एक मोमिन कहीं दुनिया भर में कहीं गमगीन होता है, इसीलिए जो कुल ईमान है मेरे मौला ने जब कहा कि तुम कुछ दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं, आ नहीं रहे थे नमाज में, तो कहा कि मौला मैं बीमार था। मौला ने कहा सही कहा तुमने, तुमने सच कहा, क्योंकि मेरी भी हालत थी। यानी वो रूह जिसका राबता इतना गहरा हो, खुद मेरे मौला कहते हैं कि हम तुम्हारे गम में बीमार हो जाते हैं। मरज ना ले मरज कुम, जब तुम मरीज होते हो तो हम तुम्हारे मरज में हम बीमार हो जाते हैं। अगर ये राबता मोहकम हो तो फिर एहसासात मुश्तरक होते हैं, वो जो गमी और खुशी का एहसास है वो मुश्तरक होता है। इंसान को मालूम नहीं होता कि कहाँ पे कोई मोमिन कोई गमगीन है जिसकी वजह से इंसान गमगीन है। इसीलिए ये भी रिवायत के अंदर है कि जब जुम्मे के दिन जब असर का वक्त आता है और ये वक्त आगे बढ़ता है तो मोमिनीन के दिल गमगीन हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो साहिब असर हैं वो इस वक्त पे गमगीन है क्योंकि दिन गुजर जाता है और जहूर चूँकि उसका इतगहूर नहीं होता, मौला जो है वो गमगीन होते हैं, इसलिए तमाम आलम के अंदर मोमिनीन गमगीन हो जाते हैं। और मुहर्रम के अंदर भी यही राज है कि जो मोमिनीन के दिल गमगीन है उसकी वजह यह है कि जो साहिब ज़मान है उसका दिल गमगीन। इसलिए इसका हल भी यह है कि मोमिनीन के दिलों को शाद करो, मोमिन के दिल को खुश करने की कोशिश करो। आज आगे दुलाबी मशहूर आरिफ गुजरे हैं तेहरान में, कहते थे कि अगर दिल गमगीन है तो मोमिनीन के लिए इस्तग़फ़ार करो। ये मोमिनीन के लिए इस्तग़फ़ार करना बहरहाल मोमिनों के मुश्किल को हल करना है। अगर मोमिन की मुश्किल को हल करोगे तो खुदा इसके बदले में तुम्हारी मुश्किल को हल करेगा। अगर दिल गमगीन है तो कोशिश करो मोमिन के दिल को शाद करो, अल्लाह तुम्हारे दिल को शाद करेगा, अल्लाह तुम्हारे दिल को खुश करेगा। और मोमिन तो बहरहाल अपनी जगह, इमाम हुसैन का ये वाक़ है, इमाम से इस तरीके से नकल हुआ कि इमाम रास्ते में जा रहे थे, इमाम ने एक बाग के बाहर देखा कि एक ग़ुलाम है, उस वक्त बहरहाल ग़ुलाम पाए जाते थे, कि एक ग़ुलाम है कि जो बैठा खाना खा रहा है, लेकिन इस तरह से खाना खा रहा है कि उसके साथ एक जानवर भी है, एक सग है, और दो लुकमे वो खुद खाता है और एक लुकमा जो है वो इस जानवर के आगे रखता है। मौला ने जब ये देखा तो उसके नज़दीक गए और उससे कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? कहा मेरा दिल बहुत परेशान है, मैं गमगीन हूँ, मैं चाह ये रहा हूँ कि खुदा की इस मखलूक को खुश करने के ज़रिए अपने दिल के गम को दूर करूँ। मौला ने देखा बहुत बामार्फत शख्स। मौला ने कहा तो गमगीन क्यों हो, गम क्या है, परेशानी क्या है? कहा मेरा गम यह है कि मेरा मालिक जो है वो एक यहूदी है जिसका ये बाग है, और मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि मेरा मालिक एक यहूदी हो। मौला ने जब ये देखा तो घर गए और 200 दीनार यानी 200 सोने के सिक्के के जो मामूली रकम नहीं है वो लेकर आए और कहा कि बताओ कि तुम्हारे मालिक का घर कहाँ है। उसके मालिक के घर पहुँचे, देखिए यहूदी था, इमाम को इमाम नहीं जानता था, लेकिन बहरहाल इमाम को एक अहम शख्सियत के उनवान से पहचानता था, आपके करम को जानता था, ये जानता था कि जो मुसलमानों के पैगंबर हैं उनके नवासे हैं। जब इमाम उसे घर गए और इमाम ने कहा कि मैं ये रकम लेकर आया हूँ और मैं तुमसे इस ग़ुलाम को ख़रीदना चाहता हूँ, तो उस शख्स ने, उस यहूदी ने कहा कि चूँकि आप मेरे घर पर आए हैं, खुद आप मेरे घर पर आए हैं, इसलिए मैंने इस ग़ुलाम को आज़ाद किया। और ना सिर्फ ये आज़ाद किया बल्कि ये जो बाग है ये भी मैंने इसे अता किया। मौला ने कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर ये जो 200 दिरहम मैं लेकर आया हूँ ये मैं इसी शख्स को देता हूँ कि ये इसकी ज़िंदगी का खर्च हो, जिससे इसकी ज़िंदगी आगे बढ़ सके। मौला ने वो रकम उसको दिया। वो जो यहूदी था उसकी बीवी ने जो ये देखा कि इस्लाम ये है, इस तरीके से दिलों के अंदर मोहब्बत को ईजाद करता है, जब उसने ये देखा तो उसने कहा कि अगर इस्लाम ये है तो मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। जब यहूदी ने देखा कि उसकी ज़ौजा जो है मुसलमान होना चाहती है तो उसने कहा कि अगर तुम इस्लाम को कबूल करना चाहती हो तो मैं भी पीछे नहीं रहूँगा, मैं भी इस्लाम कबूल करूँगा। तो एक जानवर के दिल को खुश किया, इतनी उसकी बरकतें थीं कि एक ग़ुलाम आज़ाद हुआ, साहिब बाग हुआ, साहिब ज़िंदगी हुआ और दो लोग ईमान लेकर आए। खुदा की मखलूक इस निगाह से अगर देखें, शहीद मुस्तफ़ा चमरान, शायद आप लोगों ने इनका नाम सुना हो, डॉक्टर मुस्तफ़ा चमरान, इनका मशहूर वाक़या है कि मैंने ख़ुद इनके एक करीबी से इस वाक़े को सुना कि जंग के ज़माने में जिस वक्त बासियों ने कम्युनिस्ट पार्टी सद्दाम ने जिस वक्त हमला किया था ईरान पर, उस ज़माने में ये महाज के ऊपर मौजूद थे। और उस वक्त जब ऐसा होता था कि जिस वक्त जब मिज़ाइल या रॉकेट फायर किए जाते थे तो एक बारीक सी सीटी की आवाज़ आती थी, जिसके बाद जो लोग थे वो ज़मीन के ऊपर लेट जाते थे। उसकी वजह से उसका नतीजे में होता यह था कि बहरहाल ज़ख्मी होने के इम्कान कम हो जाते थे। तो उसने बयान किया कि हम जो थे वो एक पुल के ऊपर से जा रहे थे कि जिसके नीचे पानी था, एकदम से उन्होंने कहा गाड़ी रोको, जैसे गाड़ी रोकने कहा, अच्छा आवाज़ कम होती थी तो बस दफ़ा ऐसा होता था कि हर शख्स मुतवज्जे नहीं होता था। जब उन्होंने एकदम से गाड़ी रोकने के लिए कहा तो हमें ऐसा लगा कि जैसे ये मिज़ाइल फायर किया गया है, हम एकदम से गाड़ी से जीप से कूदे बाहर और हम उस पुल के ऊपर लेट गए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मुस्तफ़ा बड़े आराम से उतरे और उनकी जो एक मखसूस कैप, अगर किसी ने उनकी तस्वीरें देखी होंगी, जो उनकी कैप थी, उन्होंने अपनी कैप उतारी, उस पुल के ऊपर लेटे और उस कैप से पानी के अंदर से एक चुड़िया को निकाला कि जो उस पानी के अंदर गिरी हुई थी, और उसके बाद कहा कि देखो कल जब हम खुदा के सामने खड़े होंगे तो हमें इसका भी जवाब देना होगा। वो माशरा के जिसके अंदर ये मोहब्बत पाई जाती है, ये सफ़ा पाई जाती है कि जो खुदा के राबते से हर मखलूक को देखता है, ये माशरा इमाम की खिदमत के लिए आमादा है। लेकिन अगर माशरे के अंदर ये मोहब्बत और हमदर्दी नहीं पाई जाती, अगर कोई किसी मोमिन के बारे में सुने या देखे कि वो परेशान है और गिरफ्तार है और उसे कोई फ़र्क ना पड़े, तो फिर यहाँ पर सबसे पहले अपने लिए मैं अर्ज़ करूँ, यहाँ पर अपने ईमान में शक करना चाहिए कि ये ईमान कमज़ोर तो नहीं हो गया, कि वो कि जिससे मेरा इतना गहरा ताल्लुक है मैं उसकी तकलीफ़ के ऊपर परेशान क्यों नहीं हूँ। अगर ये मोहब्बत नहीं पाई जाती, अगर ये रहम नहीं पाया जाता, अगर हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर देखें ये बेरहमी, जिससे मैंने कहा सबसे पहले हकीकतन खुदा गवाह है कि मैं सबसे पहले अपने लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे नफ्सों में अगर हम ढाक कर देखें तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर भी ये बेरहमी पाई जाती है। अपने घरों के अंदर देखें घर वालों के साथ हमारा क्या सलूक होता है, ख़ास तौर पे बीवी बच्चों के साथ के जिनका कोई और आसरा नहीं है, जिस वक्त वो कहीं और नहीं जा सकते, जिस वक्त ख़ास तौर पे बच्चे छोटे हैं, मोहल्ले में आसपास के लोगों के साथ या अपने अपने इदारों में वो लोग जो हमारे ज़ेर दस्त हैं, जो हमसे छोटे हैं, हमसे हमारे अंडर में है, उनके साथ हमारा क्या सलूक है। छोटी छोटी चीज़ों में देखें हम कितनी ज़्यादा अदालत के लिए आमादा हैं। अगर हम किसी जगह पर जाते हैं हम सब के साथ। मैं खुद इस मशायरी को जब जाते हैं किसी भी जगह पर, अगर मिसाल के तौर पर पासपोर्ट बनवाने के लिए जा रहे हैं, तो कोशिश ये होती है कि कोई आदमी ऐसा जान पहचान का मिल जाए कि जिसकी वजह से लाइन में ना लगना पड़े। तो इन मामूली जगहों पर अगर हम अदालत को तहमुल करने के लिए आमादा नहीं है, तो कैसे हम इमाम की अदालत को बर्दाश्त करें? मौलाए कायनात से शिकवा क्या था तो मौला के लिए क्या कुतिल फी मेहराबिही लिशिद्दते अदले। अली वो है कि जिसे उसकी मेहराब में इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो अदालत के अंदर शदीद लिशिद्दते अदले। इस अदालत की वजह से हमें कितना तामुल है इस अदालत के लिए। लेकिन ये मुहर्रम ये खुद एक फुर्सत है कि हम मश्क करें। मुहर्रम के अंदर आपने खुद देखा होगा कि वो लोग के जो साहिब मनसब भी हैं, साहिब सरवत भी हैं, जब अपने घर के ऊपर मजलिस करते हैं, जब फर्शियाजा बिछाते हैं, तो किस तरीके से तवाज़ो से पेश आते हैं घर आने वाले के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि दरवाजे पर खड़े होते हैं और कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि आने वालों की जूतियाँ सीधी कर रहे होते हैं। इमाम के सदक़े से बहरहाल इंसान यहाँ तक पहुँचता है, कोशिश ये करें कि इस चीज़ को बाकी रखें। ये जो मोहब्बत ईजाद होती है, एक दूसरे की खिदमत का जो जज्बा मोहब्बत के मुहर्रम के अंदर पैदा होता है, ख़ासतौर पर अरबईन के अंदर इसकी खास झलक नज़र आती है, ये खुद इमाम का एहसान है कि इमाम हमें इसके अंदर एक प्रैक्टिस करवाते हैं कि देखो अगर पूरे साल में नहीं तो जब हुसैन के दस्तरखान पर आओ तो इसकी प्रैक्टिस करो। क्योंकि यही वो चीज़ है कि जो इंसान को अपने ज़माने के इमाम की खिदमत तक पहुँचाओ। बार बार करबला और ज़हूर का रब्ता बहुत गहरा है। याला सारात अल हुसैन, आए हुसैन के खून का बदला लेने वाले। इमाम ये चाहते हैं कि हम अपने ज़माने के इमाम के लिए ऐसे आमादा हों कि जैसे इमाम के असहाब अपने इमाम के लिए आमादा थे। कि हर आदमी इमाम के लिए आमादा है, एक दूसरे के ऊपर भी जान निसार कर रहे हैं और सब मिलकर इमाम के ऊपर जान निसार कर रहे हैं। वफा का आलम यह है कि जब तक एक भी असहाब में से एक भी मौजूद है, अहले हरम की बारी नहीं आई। अलबत्त इसका दूसरा रुख भी है कि मेरे मौला ने इजाज़त इसलिए दी क्योंकि उस दिन सब ने शहीद हो जाना है, तो जितनी देर से शहीद होगा उसका इम्तिहान उतना ज़्यादा है। लेकिन इसमें जो दूसरा रुख है असहाब की तरफ से, कि मुमकिन नहीं है कि हमारे होते हुए हुसैन के घर वालों पर कोई आँच आ जाए। दोनों बातें अपनी जगह है, इसीलिए इतना एहतराम है। बे अभी अंतुम व उम्मी, मेरे माँ बाप आपका कुर्बान हो। किसने कहा? इमाम मासूम ने। बहरहाल इमाम के असाब 72 मासूम तो नहीं है। एक अहले दिल ने उलमा में से इस तरीके से बयान किया कि ये देखो, एक अगर इमाम मासूम के जिनके माँ बाप में इमाम मासूम हैं, फिर अभी अंतुम व उम्मी, अगर इमाम मासूम ये कह रहे हैं ज़ियारत वारिसा के ये अल्फाज, अगर इसको समझना चाहते हो तो इसको इस तरीके से समझो कि देखो ये अलग अलग फ़र्द नहीं हैं, ये हुसैन के दिल के टुकड़े हैं जो बिखरे हुए हैं। ये दरअसल हुसैन की वजूद का हिस्सा है, ये हुसैन में जम हो चुके हैं। हुसैन अमीरी व नेमल अमीर, इनमें बड़े भी ऐसे हैं, इनमें छोटे भी ऐसे, यही वजह है। जब मेरे मौला रुख्सत आखिर के लिए जब खैमों से आए और उस रुख्सत के बाद जब निकले हैं, जब बीबियों से बच्चों से रुख्सत हो लिए, तो वहां गए हैं कि जहां असहाब के लाशों को सुबह से लाकर लिटाया था। अपने असहाब को पुकारा है शेर, और इन असहाब के बाद इमाम ने जो है वो इस्तिगासा बुलंद किया है हल मिन्ना से। क्या आप जानते हैं कि इसके बाद, इस इस्तिगासे के बाद दो शहादत, ایک علی اصغر کی شہادت اور ایک عبداللہ ابن حسن کی شہادت. لیکن علماء کی زبان سے عرض کروں کہ حسین کے اس استغاثے پر فقط علی اصغر نے لبیک نہیں کہا بلکہ ایک اور بچی نے بھی لبیک کہا ہے کہ جو اپنی مظلومیت سے حسین کی صداقت پر گواہ. حسین کی وہ بیٹی جو حسین کی سینے پہ سونے والی, جو حسین کی دعاؤں کا ثمر ہے, ایسے ظالموں کے درمیان کے جنہوں نے 6 مہینے کے بچے کے اوپر تیر چلایا, حسین کس دل سے ان بچوں کو ان آخا کے نرغے میں چھوڑ کر گئے ہوں گے, یہ بات حسین کا دل جانتا ہے یا حسین کا خدا جانتا ہے؟ استعد للبلاء, میرے بچوں مصیبت کے لیے آمادہ ہو جاؤ, لیکن جان لو کہ خدا تمہیں نجات دینے والا ہے, خدا تمہیں سر بلند رکھنے والا ہے. کیسی نصرت کی ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے, کبھی ظالم کے سامنے کسی جگہ پر کوئی ایسی بات نہیں کی کہ حسین کے اس حیات من الذلہ پہ کوئی حرف آ جائے, کبھی کسی ظالم سے کچھ مانگا نہیں, کبھی کسی دیے ہوئے صدقے کو قبول نہیں کیا, کبھی کسی ظالم سے کوئی شکایت نہیں کی, تماچے کھائے تازیانے کھائے مگر خدا سے بھی کبھی شکایت نہیں کی, کبھی کسی بڑے سے, کبھی کسی زیبی سے, کبھی جناب زینب سے کوئی شکوہ نہیں کیا, امام سجاد سے کوئی شکوہ نہیں کیا. علماء کہتے ہیں کہ ہاں مگر شکوہ کیا, اس وقت شکوہ کیا, اور اس سے پہلے کہتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو کوئی اگر بچہ مسترب ہو تو یہ دنیا کا کون سا اصول ہے, دنیا میں یہ کہاں ایسا ہوتا ہے کہ اس مسترب بچے کے دل کو سکون کے لیے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر اسے بھجوایا جائے؟ یہ سکینہ کے دل کے سکون کے لیے نہیں ہے, یہ سکینہ کے قتل کا انتظام ہے جو کیا گیا ہے. وہ جس نے کبھی شکوہ نہیں کیا, جب باپ کا کٹا ہوا سر آغوش میں لیا کون ہے جس نے مجھے یتیم کیا, بابا کس نے انسانی کو خون سے لہلایا؟ وہ بچی جو کس نے شکوہ نہیں کیا, باپ کے منہ کے اوپر منہ رکھ کر جب رونا شروع کیا, روتے روتے ایک وقت وہ آیا کہ وہ بچی خاموش ہو گئی. چوتھے امام آگے بڑھے, انا للہ و انا الیہ راجعون, شاید اس کے بعد وہی جملہ کہا ہو جو حسین نے کہا تھا, رزل بے قضا و تسلیم لعمر, خدایا حسین اور حسین کہنے پہ تیرے امر پر راضی. فسیام اللہم الذین ظلموا یمن قلبا یقلبوا علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین